हम लोग यहाँ पर सत्य की खोज के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि मौत से पहले पहले उस परम सत्य को जान लें, जिसको जानने के बाद हमारी जो जन्म जन्म की यात्रा है वो समाप्त हो जाए। खोज यही है कि मैं सदा सुखी रहूं, दुखी कभी ना हूं। कोई बंधन में ना रहूं, कोई कलेश, कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई भय किसी प्रकार के ना हों, और मुक्त आकाश में विचरण करूं, किसी भी परिस्थिति में मुझे दुख ना हो। उस परम आनंद और परम सत्य जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको पाने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें शरीर से ही यात्रा करना है। क्योंकि ये पहले बता चुका हूं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। हर एक व्यक्ति के अंदर परम तत्व है, सुप्रीम बीइंग, लेकिन कोई संत, कोई महापुरुष लखावे जनावे तभी जान सकता है, अपने प्रयास से नहीं। जो जना दे, जो हमको अनुभव करा दे, वही मेरे लिए सब कुछ है। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान चांडाल से भी मिले तो उसको गुरु बना के ले लेना चाहिए, और यदि कोई ब्राह्मण हो, ऊंची जाति का हो और तुम्हारे जीवन को भटका रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। एक ही उद्देश्य है कि कदम कदम पर हम सत्य के मार्ग पर चलें, ऑलवेज असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण। थोड़ा भी लगे कि मैं आर्टिफिशियल जी रहा हूं तो उसको छोड़ दे, ऑलवेज सत्य के मार्ग पर जीने का प्रयास करें। सबके अंदर वही परम सत्य है, उसके अनुभव के लिए, क्योंकि हमने यात्रा शरीर से करनी है, हमको शरीर, हमें शरीर को अनुकूल बनाना है। जो शरीर आपको बाहर दिख रहा है इसको अन्नमय कोष कहते हैं, अन्नमय कोष। माता पिता अन्न खाते हैं, उससे रज और वीर्य पैदा होता है, और वही रज वीर्य का संयोग होता है और ये पिंड बनता है, समझ गए कि? जो भी कुछ खाते हैं हम, वो सात भागों में बट जाता है। जो भी कुछ खाते हैं पहले रस बनता है, रस रक्त, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और वीर्य, ये सात चीजें बन जाती हैं। रस रक्त, रक्त कहते हैं खून को, रस रक्त मांस ये जो मांस है ये भी अन्न से ही बनता है। रस रक्त मांस मेद जो चर्बी होती है, मज्जा जो हड्डी के ऊपर झिल्ली सा होता है, और हड्डी के अंदर वीर्य होता है। इस शरीर में जो सबसे कीमती चीज है वो वीर्य है, वीर्य शक्ति है। स्त्री के अंदर रज और पुरुष के अंदर वीर्य। और जो ज्यादा उस संपत्ति की रक्षा करता है वह व्यक्ति अंतर ध्यान होने में वो सहयोगी होता है, वो शक्ति। वासना से या वासना के चिंतन से रज और वीर्य जो है हमारे शरीर से निकल जाता है, वासना या वासना का चिंतन। और ब्रह्म चिंतन, परमात्मा का चिंतन, सत्संग का चिंतन से इसकी रक्षा होती है। इसलिए आपने ये भी देखना है कि मैं चिंतन क्या करता हूँ, समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि जो मर्जी में आ रहा है चिंतन करी जा रहे हैं, नहीं। आपकी सोच, आपकी देखनी, आपका बोलना, ये सब कुछ आपके जीवन को प्रभावित करता है। आप किसके पास बैठे हैं और आप क्या खा रहे हैं। जिस चीज का हम मीट खाते हैं ना, शरीर उसी तरह के जानवर जैसा होने लग जाता है। जब हम बकरे का खाएंगे तो फिर मैं ही करेंगे, तू थोड़े करना है। बकरे का मीट खा करके तू तो हो नहीं सकता, वो तो मैं ही होगा। और शराब पी करके कुछ और ही कुछ होना है। पांच शरीर है, अन्नमय कोष बाहर का, इसके अंदर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। कोष कहते हैं म्यान को, कृपाण जिसके अंदर रहता है ना, जो ऊपर का खोल है उसको म्यान कहते हैं। इन पांच कोषों में आत्मा का वास होता है। इन पांच कोषों को हमने ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे एक घर है जो शीशे का हो, तो बाहर से अंदर जो भी कुछ है वो दिखेगा, लेकिन ये पत्थर का दीवार हो फिर दिखेगा? हमें सब कुछ जो है ना, ये जो पांचों शरीर है उसको ट्रांसपेरेंट करना है। जो साधक आदमी, मैं सारे को नहीं कहता हूं, क्या मजबूरी है, मजबूरियां हमने खुद में बनाए हैं, मजबूरियां होती नहीं, समझ गए ना? हमने मजबूरियां क्रिएट की हैं। जो व्यक्ति साधक है, साधक का मतलब है, जो व्यक्ति साधक है, जो व्यक्ति सिख है, सिख को ही साधक कहते हैं। सिख और साधक किसको कहते हैं? जो सीखने को तैयार है, जो वाहेगुरु के मार्ग पर चल पड़ा है, उसको सिख कहते हैं। ठीक है जी? जो वाहेगुरु के मार्ग पर चल पड़ा है वही सिख है, वही साधक है। तो एक बातों का आप ख्याल रखना कि जब यदि आपके मन में ये तमन्ना है कि कि जो परम प्रकाश है, परम आनंद है, वो जो परोक्ष है, वो हमारे अनुभव में आ जाए, हमारे जीवन प्रकाश से भर जाए, आनंद से भर जाए, हर एक परिस्थिति में, भावे कोई मेरा बंद बंद काटे, भावे पानी में उबाले, फिर भी मैं आनंदित रहूं, भावे कोई सिर पर रेता डाले, भावे तत्ती तई पर बैठना पड़े या चरखड़िया ते चढ़ना पड़े, इस शरीर के साथ कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आनंदित रहूं, यदि ऐसी तमन्ना है और चल पड़ा है तो उसको साधक कहते हैं, उसको सिख कहते हैं। और सिख का फर्ज है कि जहां से यात्रा करना है उसको पवित्र रखना है। पहली बात तो यह है कि ये जो मंदिर है, जो बाहर देख रहे हैं ना, ये मंदिर है। जो बाहर का मंदिर है वो सिंबॉलिक है, वास्तविक मंदिर तो ये है। और इस प्रत्येक मंदिर में ठाकुर का वास है, वाहिगुरु का वास है। हमें ये देखना है कि हमें ठाकुर को क्या चढ़ाना है। जो अंदर परमात्मा बैठा है उसको मीट चढ़ाओगे? जो तुम खाते हो ना, वो समझो अंदर उसको चढ़ाते हो, परमात्मा जो अंदर बैठा उसको चढ़ाते हो। आज से ये विवेक करो कि हम अंदर बैठे हुए परमात्मा को क्या चढ़ाते हैं। किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में जा करके दो दिन का भजा बना हुआ भोजन फ्रिज में रख दिया और जाके चढ़ाते हो आप? हैं, ऐसा तो नहीं करते। पवित्र चीज जाके चढ़ाते हैं मंदिर में। और इस मंदिर को क्या चढ़ाते हैं? सबसे पहले अन्न को शुद्ध रखना है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, समझ रहे हैं? अन्न हमारा शुद्ध हो, थोड़ा टाइम दो उसको बनाने में और बड़े प्रेम से बनाओ, क्योंकि अन्न को इस शरीर में देंगे और अन्न रस लेगा, उससे आपकी अच्छी सोच बननी है, अच्छा सब कुछ बनना है। अब मान लेते हैं चार दिन का बना हुआ भोजन गर्म करके खा लिया तो नींद ही आओगा, क्या होगा उससे? ध्यान तो नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? फ्रिज में रखो चाहे जो मर्जी रखो। कहते स्वामी, बहुत से लोग आते हैं, कहते स्वामी सर्विस में जाना होता, ये जाना होता, वो करना होता, वो करना। यदि तुम चाहो ना तो उस रूटीन को चेंज कर सकते, ऐसी बात नहीं है। और कभी की बात तो हो सकती है, एवरीडे। मैं कहता हूँ जो दो घंटा हम बातों में खराब कर लेते हैं, दो घंटे की बात 10 मिनट में भी हो सकती है। एक दूसरे से मिलते हैं जब, जो अननेसेसरी 2 घंटा लगाते हैं, वो दो मिनट में, 4 मिनट में भी हो सकती है बात। और भोजन को बनाओ इतना प्रेम से कि हमने ठाकुर को देना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी सूट दिया, जल्दी जल्दी पानी फेंक दिया, चल। ये कोई गार्बेज थोड़े है जो है जिसको सूट दिया जो है। आप कोई भी चीज चबा करके खाते हैं तो चबा के खाने से जो हिंसा है मन में वो खत्म हो जाता है। आप देखना, जब किसी को क्रोध आता है ना तो दांत को मिचता है, समझ गए ना? बस नहीं मिचता दांत। तो जब आप कोई भी भोजन को चबा करके खाते हैं तो आपके अंदर जो क्रोध की ग्रंथि है वो क्रोध समाप्त हो जाता है, आप हल्के होते हैं। और शरीर को पूरा रस मिलता है। तो मेरा कहने का भाव, जो बाहर का शरीर है ये अन्नमय कोष है। कहते हैं एक दिन, असल टाइम हो जाता है, बताना बहुत चाहता हूँ और बहुत कुछ बताने की इच्छा है लेकिन टाइम भी देखना। कहते हैं कबीर जी एक दिन भिक्षा मांग करके लाए, संगत भी बैठे थे आप भी, और प्रसाद अच्छा के शाम को भजन सारे लोग आए, साधु लोग सत्संगी लोग आए, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, उनको मन ना लगे पूरा। और रात को सोए तो वासना जागे, तो सुबह उन्होंने विचार किया कि मैंने ये अन्न जो है जो लाया था ये कहाँ से लाया था। फिर पता किया तो पता चला ये वैश्या का घर था, जहाँ से वो लाए थे वो वैश्या का घर था, और उसने जिस भावना से बनाया होगा। इसीलिए जब आप भोजन बनाओ ना, तो ज़्यादा तो अच्छा है कि कोई ना कोई, जैसे पहली पौड़ी मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, पाठ करते हुए भोजन बनाना, वो फिर भोजन अमृत हो जाता है। समझ गए क्या? वो भोजन जो आप बच्चों को देंगे, अब आधा बंद कर दो, फिर ध्यान का क्लास शुरू करेंगे ना, सिर्फ यही दोनों बंद ही कर दो, ये बंद कर दो, ये और ये खुला रहे, खुला। मैं क्या बोल रहा था, गुरदेश बताओ।
जब भोजन करें तो पहली पौड़ी का पाठ करें। हाँ, बनाएं
जो है ना, कोई ना कोई प्रभु का नाम, और बच्चों को दे तो ये समझ के हम ठाकुर को दे रहे हैं। भावना चेंज करना है, सब कुछ भावना ही है। ये जो जिस बच्चे को आपने उस तरीके से भोजन दिया, खाना खाने तो जा, कोई रिस्पेक्ट ने, हम बच्चे को प्यार, बच्चे को रिस्पेक्ट शुरू से दिया नहीं, और हो गया जवान, अब उससे एक्सपेक्ट करते हैं हम कोई इज्जत करे, वो कहाँ से करूँगा। बहुत सी बातें हमारे जीवन में, जो भौतिक भौतिकता जो है ना, ये हमारे जीवन को बहुत दूर किया है। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है कि जब माँ बच्चे को पैदा करती है और पीड़ा से रहित हो जाए कि भाई जल्दी जल्दी चलो ऑपरेशन कर दिया, हो गया बच्चा हो गया, तो वो वास्तविक में माँ नहीं बन पाती, समझे ना। और वो धीरे धीरे जो है सो बच्चे, आज मैं यहाँ पर देखता हूँ 80% 90% माता पिता से बच्चे दूर हैं, 95 होगी मेरे हिसाब से, माता पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। 15 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, बच्चे समझते ही नहीं, समझे। उसका मूल बहुत से हमारे भी कारण हैं, शुरू से ही जो है सो हमने। अब 5 साल का बच्चा हुए, चाहे गोद में बच्चा हो, आप मंदिर ले जाएं, गुरुद्वारे ले जाएं, महापुरुषों के पास ले जाएं, 10 मिनट बैठें। प्रेग्नेंट हो उस वेले कमरे में गुरु नानक देव जी का फोटो लगाए, है जी, मूल मंत्र पढ़े इस तरह से, तो वो जो ख्यालात है वो बच्चे में जाएगा। हमें शुरू से ही बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरू से हम लकड़ी बांस को मोड़ते नहीं हैं, बाद में जो है सो लाइक होता ही नहीं। एनीवे, हमें ट्रांसपेरेंट करना है पांचों कोषों को। ये जो अन्नमय कोष है इसका भोजन है अन्न, और हमें तीन प्रकार के भोजन हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो मीट आदि है, शराब आदि है और बासा भोजन दो चार दिन का बना, हमें खाने के बाद शरीर बहुत बोझिल जैसा ना लगे, समझे ना? आप थोड़ा सा फल और रोटी और थोड़ा सा कुछ सब्जी खा करके और फिर आधा किलो मीट खा के शराब पी करके, फिर देखो दोनों के शरीर में कितना फर्क होता है। मीट शराब खाने के बाद जो है जी करेगा लेटा ही रहे, पशु की तरह सोई रहे। शरीर जो है जब हम ध्यान में बैठे, पाठ में बैठे, तो आलस ना आवे, नींद ना आवे, बोझिल ना लगे शरीर। और जो हमने किया 40-50 साल उसको फॉरगेट करना है, अब हमने नई लाइफ व्यतीत करनी, समझे ना? अब हमारा जिंदगी जो है सो टोटली नया हो, नए तरीके से जीना। दूसरा है प्राणमय कोष। आप देखना जब बैठे हैं तो श्वास की गति और होती है, चलते हैं श्वास की गति और होती है, और क्रोध के समय में और काम के समय में श्वास की गति 64 गुना तेज होता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सोहागा ढाले। क्रोधी आदमी, कामी आदमी जल्दी मर जाता है वो जो है ना। इसीलिए हम अपनी ऊर्जा जो शक्ति है ना उसको सेव करना है ये, और ऊर्ध्वगामी बनाना है। श्वास जब आप ध्यान में बैठते हैं, श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, आपकी आयु भी बढ़ जाती है और आपको अंदर प्रवेश करने में मदद मिलता है। तीसरा है मनोमय कोष। हालांकि एक एक कोष के ऊपर घंटा कम से कम हमें बताना चाहिए, एनीवे कभी टाइम आएगा तो हम करूँगा व्याख्या। मनोमय कोष ये विचारों के अनुसार, मनोमय कोष का भोजन है विचार। हमने ये नहीं मतलब कि जो मर्जी सोची जाना है, अननेसेसरी। आप वाच करो मन को कि मन क्या सोच रहा है, चली जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, जैसे मतलब ना ये शरीर का हर एक पार्ट अपनी मर्जी से करी जा रहा है, बिना आपसे सलाह लिए, बिना आपसे कोई, सब जो द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है जो मर्जी आता मन में सोच लेता है, जो कर लेता है, जो खा लेता है, जो पी लेता है, देख लेता है अपनी मर्जी से। मनोमय विचार का केंद्र है, और उसके बाद है विज्ञानमय कोष। पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, ये मनोमय कोष है। पांच ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि विज्ञानमय कोष है। विज्ञानमय कोष किसे कहते हैं सो भी समझो। विज्ञानमय कोष में बुद्धि प्रधान है। सबसे इंपॉर्टेंट मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष है। हम अपने लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेते हैं, बुद्ध जो विज्ञान में कोष जो है वो डिसीजन है। हमने जो राइट डिसीजन लिया है, सच्चाई तो ये है कि जो गुरु का डिसीजन है, महापुरुष का डिसीजन है, वो लेकर के उसके ऊपर चले, समझे ना। या तो किसी को बना लो या किसी का बन जा, समझे ना। लेकिन वो सब काम आधा आधा होता है, ना हम पूरा बना पाते हैं ना किसी का बन पाते हैं, अधूरी अधूरी जिंदगी, समझे। यहाँ पर विज्ञान में कोष में एक निश्चय, एक बुद्धि में संकल्प कि अब ऐसे जीना, एक दिन जीना है इस धरती पर, लेकिन ऐसे जीना है, हमें 100 साल भार होके नहीं जीना है, धरती पर बोझ नहीं पाना। हमने ऐसे लोगों का संग करना ही नहीं है जहां से दूषित विचार हमको मिले। 4 दिन उपेक्षा करो, आपे टूट जाओगे। इग्नोर करो 4 दिन, बात खत्म हो। हमने संग ही ऐसे लोगों का करना है जहां से हमारा ख्याल, हमारी बुद्धि, हमारी सोच ऊपर उठे, समझे। एक साधक को, एक सिख को अपने जीवन के प्रति बहुत जिम्मेवारी की जरूरत है, बहुत ज्यादा, समझे। और उसके बाद है आनंदमय कोष। इन 5 कोषों से पार जाना है। और जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, अवेकनिंग, ड्रीमिंग एंड साउंड स्लीप, इन तीनों अवस्थाओं में जो जानने वाला है, साक्षी चेतन, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूं। एक है जड़ और दूसरा है चेतन, ठीक है जी। जड़ किसको कहते हैं, परमिंदर बताओ, जड़ किसको कहते
हैं? शरीर रहती नहीं, स्थिर नहीं है,
जिसका नाश हो गए। गुरदेश बताओ, आंख बंद करने से काम नहीं चलना है? ये थोड़े कि मैं बताई जावा तू दूसरे काने से निकाली जाओ, ये इस तरह से प्रेम और इस तरह से मित्रता नहीं चलनी, समझे कि नहीं।
शरीर जड़
है,
शरीर जड़
क्या,
शरीर जड़,
मैं ये तो पूछा नहीं कि शरीर जड़ है।
मैं दर्शन,
हाँ जी,
पत्थर, पहाड़,
मैं ये नहीं पूछ रहे हैं, मैं ये नहीं पूछ रहे हैं। जड़ कहते किसको हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जड़?
जो खुद को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने।
ये देखो, रंजीत ने ठीक बोली, समझे ना, जो स्वयं को ना जाने और दूसरे को भी ना जाने। अब जैसे ये पेन है, ये अपने को जानता है, नहीं जानता, और दूसरे को भी नहीं जानता, ये जड़ है। और ठीक इसका उल्टा, चेतन उसको कहते हैं जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने। ये लंबी चौड़ी व्याख्या करते थे, ये दोनों जो है ना, एक राशि वाले परमिंदर और परमजी, ये और ही और ही बातें करते। टू द पॉइंट बोलो और टू द पॉइंट उसको चिंतन करो। पिछले मैं क्लास में बता चुके, जब मैं पूछा, इसलिए मैं न्यास इसलिए नहीं पूछा कि पिछले वाले ने कुछ यात्रा कर रहे हैं कि उतने बैठे। अच्छा, किससे मैं
पूछूं?
नहीं, वो तो हो गई। अच्छा, ये आप बताओ कि इस संसार में आपके अलावे कौन है जो जानता है।
चेतन
आपके अलावे बोला मैं। इस संसार में आपके अलावे खोजो कोई परमात्मा कोई और को खोजो। आए जी परमात्मा सबको जानते। तो एक परमात्मा और एक तुम भी तो जानते ही हो।
तो
दो हो गया ना।
नहीं सब ही सेम ही है।
मैं ये पूछा है इनसे कि आपके अलावे एक्सेप्ट यू आपके अलावे इस संसार पूरे ब्रह्मांड में कौन है जो जानता है।
परमात्मा की बिठाई हुई आत्मा
है।
आत्मा
मैं तो आपके अलावे एक्सेप्ट यू इस पूरे ब्रह्मांड में कौन है जो जानता है। इतना सा क्वेश्चन है और तुम क्वेश्चन का भी बेचारे का बुरा हाल कर देते हैं। यदि विचार करोगे ना आप तो दो तीन क्लास लगा ही चुके हैं। ये सच्चाई है कि आपके अलावे इस ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता। नेवर। देखो ना गौर से देखो पूरे ब्रह्मांड को देखो।
जो अच्छे बुरे काम देखता है
हाँ तो मेरा मतलब है वो कल्पना ही है ना। आपका अनुभव तो नहीं ना ये कि देखता भी है या नहीं देखता है। हमने पढ़ा या सुना है। या तो पढ़ा है या सुना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आप जानते हैं। इसमें दो राय नहीं है। आप जो है अपने को भी जानते हैं दूसरे को भी जानते। इट मीन्स यू आर चेतन। समझे ना। गाढ़ी नींद में जिस परमात्मा की आपने कल्पना कर बैठा है कि यहां होगा ऐसा होगा हर एक ने कल्पना कुछ ना कुछ कर बैठा है वो गाढ़ी नींद में वो होता है। वो क्योंकि ना मैं हर एक चीजों को चाहता हूं आंख खोल करके देख लो अपनी आंखों से। मैं कहता आंखन देखी। समझे ना। गाढ़ी नींद में
हमारी आत्मा ही है जो जागती है।
जागती है
जागती है। आत्मा ही है जो जागती है। हम तो सोए
होते
हैं। हाँ। तो आत्मा है जो जागती है।
जा ये ठीक है। हम जो जागने वाला है उसका नाम हमने आत्मा बोल दिया है।
हाँ जी।
ठीक है।
हाँ
जी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
हाँ जी।
लेकिन मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा हूँ उत्तर कुछ दो ये नहीं ठीक। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जागृत अवस्था में अभी जागे हैं ना। अभी जागे में हमने जिस वाहिगुरु को जिस परमात्मा को हमने कल्पना कर बैठे हैं वो ऐसा होगा वो ऐसा होगा वो ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा। जब आप गाढ़ी नींद में होते हैं तो उसका पता चलता है।
नहीं
चलता। तो मैं तो सीधी सी पूछ रहा हूँ। मैं घुमा के तो पूछता नहीं। समझ रहे ना।
तो कुछ नहीं पता चलता।
कुछ नहीं पता चलता ना, ना हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, सब कुछ जो साउंड स्लीप है सबको बराबर कर देता है, नहीं कर देता, एक बार कालिक से पोत देता है सारा कुछ, नहीं एक कर देता है सारी। लेकिन वहां पर भी एक होता है जो जानने वाला, वहां पर भी होता है एक होता है अनुभव ज्ञान, एक होता है कल्पना ज्ञान, एक होता है स्मृति ज्ञान, समझ गए ना। ये जो सामने देख रहे हैं ये हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञान है, नहीं? और जैसे परमिंदर अपने घर के बारे में बताने लगे, वो ऐसा है ऐसा ऐसा, तो तुम जो बोलोगे वो स्मृति ज्ञान होगा, क्योंकि अनुभव किया हुआ है और तुम उसका व्याख्या कर रहे हो, तो तुम्हारे तो ख्याल में आ रहा है, स्मरण में आ रहा है। तुम्हारा जो ज्ञान होगा वो स्मृति ज्ञान होगा, लेकिन मेरा जो होगा वो कल्पना होगा। देखने के बाद जो चीजें ओझल हो जाए, देखने के बाद जो चीजें ओझल हो जाए और उसके बारे में बताई जाए, उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। अभी आपका घर के बारे में कुछ भी होगा तो याद आएगा, लेकिन आप मुझको बताएंगे तो मेरे लिए कल्पना होगी, क्यों ना, हमने देखा नहीं। गाढ़ी नींद में कोई ना कोई वहां जागा होता है जो उठने के बाद बोलता है कि नहीं मैंने बहुत सुखपूर्वक सोया, मैं बहुत सुखपूर्वक सोया और मुझे पता नहीं चला। उस वक्त जो अनुभव किया है ना, उसका जागने में स्मृति आ रहा है, याद आ रहा है, नहीं याद आता, इसका मतलब कि दैट टाइम यू आर प्रेजेंट। जो अनुभव हुई चीज होती है उसका बाद में स्मृति ज्ञान होता है, और जो सामने है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जिस चीज को हमने देखा ही नहीं है और उसके बारे में बताया जाए, वो कल्पना होगा। एक चीज मैं बताता हूं, जब तक हमने वाहेगुरु का अनुभव नहीं किया है और यदि हम उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो कौन ज्ञान होगा? कल्पना होगा ना, कल्पना ही होगा। और जो ब्रह्म ज्ञानी होगी उसका है? उसका क्या होगा है? क्या चीज
उसने जाना होगा? स्मृति,
स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञान होगा ना। अनुभव किया है ऐसा है, मिलिया होइना बिछड़े जे मिलिया होई। जब एक बार वाहेगुरु का अनुभव हो जाए ना तो स्मृति ज्ञान नहीं होता, वो ऑलवेज अनुभव ज्ञान होता है। जड़ वस्तु कभी सामने है कभी सामने नहीं है, जड़ वस्तु का स्मृति ज्ञान होता है। हमने अभी देखा है और अभी जो है इसका स्मृति हो रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन परमात्मा का स्मृति नहीं होता, जब भी होता है अनुभव ही होता है। एक बार अनुभव होने के बाद वो ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट के लिए छिप जाता है, समझ रहे हैं ना बात, उसका स्मृति ज्ञान नहीं होता। वो कहां कहां ओझल होगा वो। इसीलिए मिलिया हो न बिछड़े जे मिलिया हो, गुरबानी में आता है, एक बार वो मिल जाए तो बिछड़ता नहीं है। अनुभव से पहले उसके बारे में जो भी बताना वो सब कल्पना है, और किसी के अनुभव के बारे में बताना वो और खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी से सुना और फिर वो बोला और फिर उससे वो सुनेगा, चार छह आदमी के बाद से वो बात क्रॉस करती है ना, तो टोटली झूठ हो जाती है।
पर समय अंदरों कई बार क्लियर थॉट्स जिड़े आने ने तो सिख से बंदे ने पॉजिटिव गल करते हो, वो भी तो वाहेगुरु जी दी अपनी देन है ना, वो वाहेगुरु दे गुण नहीं है।
ऐसा है, देखो जो जो वो सद विचार है वो अच्छी विचार है, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, समझ रहे ना। एक बुरे विचार हैं, एक अच्छे विचार हैं,
तो अंदरों ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ना।
ऐसा है ना, मैं ये कह रहा हूँ जो भी विचार होगा उसकी शक्ति तो आत्मा से ही लेगा ना, परमात्मा से ले। बुरा विचार हो या अच्छा विचार हो, देखो ना, अब ये अच्छा रिकॉर्डिंग करे या बुरा रिकॉर्डिंग करे, लेकिन इसकी सारी शक्ति ये बैटरी से ले रहा है, नहीं ले रहा। मन है आपका, मन अच्छा सोचे या बुरा सोचे, मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत अच्छा सोचा तो वो अंदरों आया, तो बुरा सोचा वो बाहर आ गया। जो बुरा सोचा ने उसकी शक्ति भी तो वाहेगुरु ने दिया है, उसको कौन कौन देगा उस शक्ति। वो हमने बुरा सोचेंगे तो बुरा सोचने की जो शक्ति आई मन में वो कहाँ से आया, तो वाहेगुरु से नहीं आया। मैं आपको बताया ना, देखो जो शक्ति है ना, शक्ति द एग्जिस्टेंस वो न्यूट्रल है, समझे ना, वो गर्मी दे या ठंड दे वो दोनों को दे रहा है बिजली। इंस्ट्रूमेंट का काम है उसको क्या कन्वर्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिज लगा दें तो ठंड देने लगता है, हीटर लगा दें गर्मी देने लगता है, पंखा लगा दें हवा देता है, समझे ना। इलेक्ट्रिसिटी का काम है ओनली शक्ति देना, वो उसको किधर यूज करता है, समझे ना। आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, दोनों को शक्ति वाहेगुरु ही देती है, शक्ति, समझे ना, शक्ति ही वाहेगुरु है। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना, देखो गुरबानी, अभिमान करे और या क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना, जब अपनी जोत खींचे है तू स्वामी तो कोई करो दिखा बखियाना। मैं कहता हूं जोत खींच ले परमात्मा तो कोई बुरा सोचेगा, अच्छा सोचेगा। अच्छा और बुरा जो हमें सोचने की शक्ति है वो वाहेगुरु की है। सारी शक्तियां जो है, इसलिए कहते हैं ना कि उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, क्यों कि जो द एग्जिस्टेंस है ना, शक्ति है ना, ये उसकी है। आपको बुद्धि के अंदर, मन के अंदर वाहेगुरु ने ऐसी क्षमता दी है कि उस शक्ति को आप राइट यूटिलाइज करें या रॉन्ग यूटिलाइज करें। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपनी शक्ति को यूटिलाइज करके इतना स्वर्ग बना सकते हैं और मिसयूज करके नरक बना सकते हैं।
So, ये हमारी मन बुद्धि में निर्भर करता है कैसे?
और क्या, ये जो है ना, ये सारा जगत मन के अंदर है। आप गौर से देखो ना, जब आप गाढ़ी परमजीत परमिंदर जब गाढ़ी नींद में आप सो जाते हैं तो कौन सोता है? शरीर सोता है? शरीर तो वैसे ही पड़ा होता है। जब आप साउंड स्लिप में होते हैं तो होता क्या है? मन जो है ना, मन कारण शरीर में चला जाता है। कारण शरीर है अविद्या, उसमें सो जाता है, चला जाता है, उसकी गोद में चला जाता है। आंख वही खुला रहता है, आंख को खोल करके कहो देखो तो देखता ही नहीं है, कान को कहता कहो सुनो सुनता ही नहीं है। सारी इंद्रियां वैसे ही होती है लेकिन कोई वर्क नहीं करता। इसका क्या मतलब है? शरीर में मन नहीं है, मन में शरीर है। और इतना ही नहीं है, द होल वर्ल्ड जो है इस मन के अंदर है। आप गौर से देखो, जब आप सो जाते हैं तो सारा संसार सो जाता है, नहीं सो जाता है? आपके सोते ही सारा संसार सो जाता है और आपके जगते ही सारा संसार प्रकट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सारा संसार मन के अंदर है। अब देखो इसी चीज को कबीर जी की देखो, कबीर जी कह रहे हैं, मैं उदाहरण ऐसा ना कहो कि स्वामी जी तुसी अपने ही बोलते हो, कोई इनलाइटेंड पुरुष का भी बात उदाहरण दो। कबीर जी कहते हैं क्योंकि ये सारा संसार माया से बना ना, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, का ही कहूं समझाए। आप ये सोचो सारा ब्रह्मांड माया से बना है और वो माया मन के अंदर है। इस मन को इतना छोटा ना समझे ना। अच्छा एक बात और, कल के परसों कोई मुझको पूछ रहे थे प्रश्न कि स्वामी जी मन बड़ा चंचल है, कल पूछ रहे थे, मन बहुत ठीक था। मन का चंचल होना ये परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। तुझे समझ नई बातें बता, तुम बोलते परमात्मा की सबसे बड़ी देन क्या है कि आपका मन कहीं नहीं टिकता। अच्छा मैं मान लेता हूं कि मन हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है इसमें, तो आगे यात्रा होती? हम मन इससे नहीं संतुष्ट हुआ तो इसको छोड़ दिया, फिर पति से के साथ मन लगाया, वहां से भी टूट गया। मन ने पत्नी के साथ लगाया, पढ़ाई के साथ लगाया, धन के साथ लगाया, हर एक जगह वो तोड़ता जा रहा है। वाहेगुरु कितनी कृपा है उसकी, सिर्फ एक जगह मन लग जाए ना वहां से नहीं टूटता। परमात्मा हर एक जगह से जहां तुम जोड़ते हो वहां से वो तोड़ देता है। देखो तुम्हारा काम है जोड़ना, उसका काम है तोड़न, तोड़ी जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, लेकिन एक बार उसके साथ लग गया ना तो वो नहीं तोड़ेगा फिर। इसका क्या मतलब है? जब आप सुई के अंदर धागा पाते हैं ना तो पाते रहते, कभी इधर गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, एक यदि उस छेद में चला गया तो फिर आपका जो मन है ना कभी वहां जुड़ते रहते हैं, वो तोड़ते रहता है। वो आपके ऊपर कृपा करी जा रहा है। एक बार वाहेगुरु के साथ जो है ना आपका जोड़ लिया ना, फिर नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य है आपका, वहां से नहीं तोड़ सकता। वो चांस दे रहा है आपको अगेन एंड अगेन, वहां जोड़ रहे हैं, तोड़ी जा रहा है। और मान लेते हैं पहले जोड़ देता वो, हम शादी से पहले हम कहे भाई हमारे लिए पत्नी सब कुछ है, पत्नी ने सोची पति सब कुछ है, इससे आगे कोई दुनिया नहीं है, और जोड़ी रखता है, और आज हम परेशान हैं और जोड़ी रखता, तो फिर हम क्या करते? हम परमात्मा को नहीं बोलते तो देखा जाए तो प्रभु की कितनी कृपा है कि जब तक वो द सुप्रीम बीइंग जो है ना तक ना पहुंच जाए मन, तब तक वो तोड़ते रहता है। तो हर एक जगह से मन को तोड़ते रहता है, तो ये उसकी कृपा नहीं है? एक उसके अलावे आप कहीं संतुष्ट हो जाते तो यात्रा होती? फिर आपका मन वाहेगुरु के अलावे कहीं स्टक हो जाता तो फिर यात्रा होता वहां तक का? नहीं होता। आप 50 साल, 60 साल, 70 साल तक आप वाहेगुरु के अलावे और जगह खोज रहे हैं, फिर एक जन्म और देता है। एक बार अष्टक वाहेगुरु के साथ हो गया, फिर नहीं तोड़ता, फिर टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो गुरबानी कह रहे, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है गुरमति रंगमान। गुरु की मति के द्वारा, गुरु की समझ के द्वारा, गुरु की सोच के द्वारा ये तू जान हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू ज्योत के साथ अष्टक हो जा, और किसी के साथ अष्टक ना। और एक बार उसके साथ जो अष्टक हो गया, बात खत्म।
ये मतलब हुआ सभी के रिश्ते नाते टूट जाएंगे?
नहीं, तो चिपके रहो मौत तो ऐसे भी जो है सब।